ஒன்றே சபை சரணாறு குண்டு பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதுகி அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்துகி கிரந்தராஜ் ஸ்ரீமத் பாகவத ஸ்ரீ ஸ்ரீ நிதாய கௌர ஹரி கி ஜய் ஸ்ரீ கோகுல் தாம கி ஜய் நிதாய கௌர் பிரேமானந்தே பக்த விருந்து கி ஜய் சமவேத பக்த விருந்து கி ஜய் சமவேத பக்த விருந்து கி ஜய் ஸ்ரீ ஸ்ரீ குரு கௌராங்க கி ஜய் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய
ஸ்ரீமத் பாகவதம் பஹலா ஸ்கந்த பஹலா அத்யாய முனியோ கி ஜிஜ்ஞாசா ஸ்லோக் சங்க்யா 16 अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान के पुण्य यशों को नहीं सुनना चाहेगा। तात्पर्य। कलयुग अपने कलह प्रधान गुणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूर्ण है कि थोड़ी सी नासमझी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। जो भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें आत्म श्लाघा की कोई इच्छा नहीं है और जो कर्मों के फल तथा शुष्क ज्ञान से मुक्त हैं, वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने के लिए उत्सुक तो हैं, किंतु उन्हें भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कुछ पता नहीं है। इसके विपरीत ऐसे नेता भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी हैं। दूसरे शब्दों में, मूर्ख नेता भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लभ्य जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती हैं। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने के लिए संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं, तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशोगान करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवत में पृष्ठों में अंकित है। अनुवाद दोहराइए। इस कलह प्रधान युग के
पापों से
उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान के
पुण्य यशों को
नहीं सुनना चाहेगा।
जय Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastava Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama
Hare 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 Krishna. इस वर्तमान युग कलयुग का वर्णन यहाँ हम पढ़ रहे हैं। इस युग में जटिलता क्या है इसका भी उल्लेख है और ऐसे जटिलता से दूर होने का या मुक्त होने का मार्ग भी बतलाया गया है। इस युग का नाम है कली युग। कली आता है, ये शब्द कली आता है कलह शब्द से जिसका मतलब है झगड़ा। तो कली युग मतलब कलह प्रधान युग। जिस युग में कलह या झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये अत्यंत निकृष्ट युग माना जाता है क्योंकि इसमें सबसे अधिक कलह होता है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूर्ण है कि थोड़ी सी नासमझी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। तो ये है कली का पहचान, थोड़ी सी नासमझी, थोड़ी सी गलतफहमी और इतना बड़ा झगड़ा पैदा हो जाता है। कभी कभी देशों के बीच में युद्ध हो जाते हैं, लाखों लाखों लोगों की हत्या भी हो जाती है केवल थोड़े से नासमझी के कारण। तो ये कलयुग बड़ा विकट है, जटिल है ये युग क्योंकि पापों से भरा हुआ है। पापाचारी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर अधिकतर ऐसे पापाचारी लोग ही दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे युग में क्या किया जा सकता है, कैसे ये कलह से बचा जा सकता है, इसके बारे में तो श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है कि कलयुग के लोग कैसे होते हैं। प्रायणालपायुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुताः। कि कलयुग के लोग, उनकी आयु बहुत कम होती है, अल्प आयुषः, और उनकी बुद्धि भी ठीक नहीं होती, मंद बुद्धि के होते हैं। और सुमंद मतयो, हमेशा उनकी जो मार्गदर्शन करने वाले होते हैं वो भी गलत होते हैं, कोई गलत मार्ग पर उनको ले जाते हैं, आध्यात्मिक मामलों के बारे में बड़े आलसी रहते हैं, आध्यात्मिक विषय में कोई रुचि नहीं रखते। कई बार हम ये अनुभव कर चुके हैं, जैसे हम रेलगाड़ी में जाते हैं तो जब कोई भौतिक बातचीत चल रही होती है तो आदमी कितना चौकन्ना रहता है, कितना ध्यान उसका रहता है, तेज बड़े उत्साह से बातचीत करता है, हंसता है। फिर हम जब बैठे हुए होते कभी हमसे बातचीत शुरू करते हैं, हमसे कुछ पूछते हैं और हम बोलना शुरू करते ही नींद आने लगती है। तब तक तो इतने उत्साह से बड़े आराम से आनंद से बात करते हैं आपस में क्योंकि उन विषयों में उनको बहुत रुचि है। ऐसे तो तरह तरह के विषय होते हैं जिनका कोई अंत नहीं है, जैसे कि भागवत में कहा गया है श्रोतव्यादीनि राजेंद्र ऋणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। इसका मतलब है कि अभी सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कि हे राजन, इस कलयुग में श्रोतव्य सुनने के लिए, आदि आदि मतलब और बोलने के लिए, स्मरण करने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, ऐसे अनेक विषय हैं। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र, हे राजन, नृणाम संति सहस्रशः, सहस्र मतलब सैकड़ों सैकड़ों ऐसे विषय हैं भौतिक जगत में जिसके बारे में लोग सुनते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, लिखते पढ़ते हैं, और ये सब भगवान के विषय में नहीं होते हैं, कोई ना कोई संसार के विषय होते हैं। कोई ना कोई नए नए विषय निकालते रहते हैं या वो पुराने घिसे पिटे बातें बोलते रहते हैं, क्योंकि उनका चित्त सदैव भौतिक जगत में ही रहता है। गृहेशु गृह मेधिनाम, उनके जो चित्त है वो अपने गृह में, अपने संसारी जीवन में रहता है। संसार के बाहर उनको कुछ ज्ञान नहीं है, न ही कोई रुचि है कुछ जानने के लिए कि इसके बाहर भी कुछ होता है। अपश्यताम आत्मतत्वम, उस आत्म तत्व को, आध्यात्मिक ज्ञान को अपश्यताम, वो नहीं देखते हैं, और इसलिए अपने संसार में ही बहुत रुचि लेते हैं, इसी को सब कुछ मानते हैं। ये हमें आश्चर्य होना चाहिए कि हम देखते हैं, सुनते हैं कि तरह कितने विषय हैं भौतिक लोगों को बात करने के लिए। कोई भी विषय जो अपने मन के ऊपरी भाग से निकल आता है, बस उसको बोल देते हैं लोग, गहराई में सोचते नहीं है कुछ नहीं, जो मन में आया बोल देते हैं। चर्चाएं तरह तरह के विषयों के ऊपर चलती रहती हैं, वो अपने अपने विश्लेषण करते हैं, अपने विचारों को सुनाते हैं अन्यों को, और ऐसे विचार विमर्श चलता है। कभी कभी रेलगाड़ी में जाते जाते इतनी हंसी भी आती है इनकी बातचीत सुनकर, ये सब अपने ऐसे गंभीरता से विश्लेषण करते हैं, चर्चा करते हैं कि मानो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय की बात बोल रहे हो। समाज की समस्या क्या है, कैसे सुधारा जा सकता है, वो सब गहराई में विश्लेषण करते हैं, परंतु इसका कोई निष्कर्ष निकलता नहीं है। हर एक का अपना अपना मत होता है, और केवल थोड़ा बहुत उनका समय बस चले जाता है, इतना ही होता है। और लोगों को समय काटने के लिए कोई साधन नहीं होते हैं, इसलिए एक उपाय उनके पास अवश्य है, आपस में बातचीत करते रहना, बड़बड़ाते रहना, कोई ना कोई बकवास बोलेंगे, लेकिन अपना समय इस प्रकार से काटेंगे। एक बार हमें याद है, कई साल पहले की बात है, हम रेलगाड़ी में अकेले बैठे थे, तो हमारे साथ सब लोग निकल गए थे, हम अकेले बैठे थे, और दूसरे भाग में और कोई दो तीन व्यक्ति थे। तो एक व्यक्ति वहाँ से हमारे पास आया बातचीत करने के लिए, तरह तरह के सवाल कर रहा था, तर्क भी कर रहा था, और एक घंटा हमारे साथ बैठा, उनको छोड़ नहीं रहा था। फिर एक घंटे के बाद हमने सोचा कि ज़्यादा समय इसमें इसके लिए देने के लिए कोई अच्छा नहीं, हमारा समय भी का स्वरूप सदुपयोग नहीं है, तो हमने कहा भी हमको थोड़ा काम करना है, तो ठीक है, वो चले गए। वहाँ जाकर वो अपने मित्रों से बोल रहे थे, हमने सुना, चलो अच्छा टाइम पास हो गया। मतलब अपने समय कट नहीं रहा था, तो समय काटने के लिए वो हमारे पास है, ताकि हमारा समय बर्बाद हो। उनको रुचि नहीं थी कोई आध्यात्मिक इसमें, लेकिन उनको थोड़ा एक मनोरंजन का एक वार्तालाप चाहिए था, संवाद चाहिए था, कुछ बात करें, देखें, यूं ही बस। रेलगाड़ी में जाते जाते आपको अनेक पत्रिका वगैरह बेचने वाले लोग मिलेंगे, तरह तरह के पत्रिकाएं हैं, वो क्या बोलेंगे, टाइम पास बोल के जाते हैं। टाइम पास करने का सही तरीका लोगों के पास नहीं होता है, या तो बकवास करते हैं आपस में बैठ के, या बकवास पढ़ते हैं, कुछ न कुछ ऐसे व्यर्थ के कार्य करते हैं। तो ऐसे श्रोतव्यादीनि राजेन्द्रम संति सहस्रशः, तो सैकड़ों सैकड़ों ऐसे विषय रहते हैं जिनसे उनका मन केवल और विचलित और उत्तेजित हो जाता है। ऐसे विषयों के से मन शांत नहीं होता है, फिर भी ये लोग आपस में और चर्चा बढ़ाते रहते हैं। वो नहीं जानते हैं कि ऐसे विषयों से कोई समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो ये कलह है, कली का युग है, और जब ऐसे ज्यादा बात करते हैं तो लोगों में वैर उत्पन्न हो जाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि बोलने की प्रवृत्ति को हमें काबू में रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बोलेंगे तो दुश्मनी पैदा होती है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि हमें अन्यों के बारे में बोलने की वृत्ति होती है, कुछ बुराई करने की, साथ साथ बोलने की वृत्ति। तो ये दो चीज़ों को मिलाइए, क्या होगा? एक तो बोलने की वृत्ति, दूसरा है अन्यों की बुराई करने की वृत्ति। तो जब हम कुछ बोलेंगे तो अवश्य कोई ना कोई बात अन्यों के बारे में बुराई निकलेगी, और जब उस व्यक्ति को पता चलेगा कि हमने उसके बारे में बुराई की है तो दुश्मनी हो जाएगी। तो ये संसार है, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोग अपने ज़बान पे काबू नहीं लग सकते हैं। तरह तरह की चीज़ें लिखते हैं, बोलते हैं, और आपस में ऐसे दुश्मनी होती है, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, वैर बढ़ते जाता है। और इसलिए कलह का युग, क्योंकि लोगों को सहनशीलता नहीं है, लोगों को एक समझने की समझने का धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है, इसलिए सब समस्याएं होती हैं। तो जगह जगह ऐसी समस्याओं को देखकर व्यक्ति निराश हो जाता है, परंतु ये है ही कलयुग का लक्षण, दोषों का सागर है ये। कलो दोष निधे राजन, अस्ति ही एक महान गुण, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगह परम व्रजेत। कि हे राजन, शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये कलयुग जो है ये दोषों का सागर है, तो सब जगह इसमें दोष तो दिखाई पड़ेंगे, स्वाभाविक है। समुद्र बीच के बीच में जब हम जाएंगे और चारों दिशाओं में देखेंगे तो पानी नहीं दिखेगा तो और क्या दिखेगा, पानी ही दिखने वाला है। उसी प्रकार से दोषों के सागर के बीच में हम हैं तो चारों दिशाओं में देख के हमें क्या दिखाई पड़ेगा, दोष ही दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे दोषों के सागर में एक महान गुण है, कीर्तनाद एव कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान, कृष्ण कथा। कीर्तनाद, कीर्तन मतलब केवल नाम संकीर्तन नहीं, वो तो प्रमुख कीर्तन है, परंतु कृष्ण कथा, कृष्ण के उपदेश, कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण के संदेश, कृष्ण के बारे में जो भी बातें होती हैं, कृष्ण के संबंध में जो भी बातें होती हैं, वो भी कीर्तन है। तो कीर्तनाद एव कृष्णस्य, तो कृष्ण कथा, कृष्ण नाम का कीर्तन, यही एकमात्र उपाय है इस कलह प्रधान युग में कलह को मिटाने के लिए और प्रेम, भाईचारा इत्यादि को जागृत करने के लिए, अन्यथा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। मुक्त संग्रह, ऐसे कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन से हम भौतिक आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं, परम व्रजेत, भगवान के धाम में हम चले जा सकते हैं। इसलिए यहां बताया गया है कि इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान के पुण्य यशों को नहीं सुनना चाहेगा। ऐसे गान करते रहना चाहिए बस, अपना जीवन ऐसे कटना चाहिए, जो भी सेवा हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, भगवान का नाम लेते रहना। तो यहाँ ये हो रहा है कि ऐसे पापों के उद्धार पाने वाला व्यक्ति इस कलह प्रधान युग में कौन ऐसा है जो भगवान के पुण्य यशों का गान नहीं करेगा और सुनेगा। एक ऐसे प्रकार का व्यक्ति है जो नहीं सुनेगा। स्वयं राजा परीक्षित ही बोलते हैं सुखदेव महाराज को, निवृत्त तर्षे रूपगीय मानात भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। प्रभुपाद जी ने जब कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ये ग्रंथ लिखा, कृष्णा बुक जो हम कहते हैं, उसके शुरुआत में उन्होंने ये श्लोक दिया है कृष्ण कथा का महत्व समझाने के लिए। ये कृष्ण कथा सुनना, बोलना, पढ़ना, सुनाना कितना महत्वपूर्ण है। तो राजा परीक्षित ये बात बोलते हैं उनको पता चल जाता है, अभी इतना सुन चुके हैं भागवत, बाद में उनको पता चलता है कि कृष्ण कथा का कितना महत्व है। वो बोलते निवृत्त तर्षे उपगीयमानात्, जो निवृत्त है इस भौतिक जीवन जगत के भोग वृत्ति से, जिसकी भुक्ति की तृष्णा खत्म हो चुकी है। भुक्ति मतलब भोग करने की इच्छा, तृष्णा मतलब प्यास, मतलब लालसा। जो भुक्ति की तृष्णा तर्षय निवृत्त, जो निवृत्त हो चुका है, जिसके अंदर और भोग की वासनाएं नहीं है, ऐसा व्यक्ति उपगीयमानात् वो भगवान की कथा को सुनता है। का उत्तम श्लोक गुणानुवादात्, भगवान कृष्ण का नाम है उत्तम श्लोक, जिनको उत्तम श्लोकों से वर्णन किया जाता है। और ऐसे भगवान की कथाएं कैसी होती है, वो कहते निवृत्त तर्षिर उपगीयमानात् भवौ सदा श्रोत्र मनो अभिरामात्। वो अपने कानों को, अपने मन को बड़ी प्रसन्नता पहुंचाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है अभिरामात, कि कृष्ण कथा सुनने से हमारे कान, हमारा मन, हमारा हृदय ये प्रसन्न हो जाता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, तो भक्ति करते समय हमारा चित्त प्रसन्न होना चाहिए। और चित्त प्रसन्न कब होगा, जब हम नियमित तौर से कृष्ण कथा सुनेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे और नाम लेंगे। तो अपने सेवा में भी उत्साही होने के लिए हमें चाहिए कि हमारे श्रवण अध्ययन को हम अच्छी तरह से करें नियमित समय से। यदि हमारे भक्ति मार्ग में हमें लग रहा है कि हमारा उत्साह कम हो रहा है, सेवा में रुचि नहीं लग रही है, या किसी अन्य कारण से कुछ मन उदास सा हो रहा है, तो हमें तुरंत हमारा श्रवण बढ़ाना चाहिए। जैसे श्रवण करेंगे हमारा चित्त पुनः प्रसन्न हो जाएगा, और प्रसन्न चित्त से फिर उत्साह पूर्वक हमारी साधना, हमारी सेवा, संग, हम सब कुछ कर पाएंगे। और परीक्षित महाराज कहते हैं भवौषधाश, भव औषध, ये भव औषध मतलब भव रोग के लिए औषध है। ये भव रोग क्या है, भव मतलब हो जाना, क्या हो जाना, बीमार हो जाना, बूढ़ा हो जाना, मर जाना, पुनर्जन्म ले लेना, ये है भव। तो हो जाना, बारंबार ये चार चीजों को हो जाना, पुनर्जीवित होना, पुनर्मरना, ये चार चीजें जहां होती हैं उसको भव कहते हैं। और क्योंकि ये इतना विशाल है, इतना विकट है इसको पार करना, इसलिए इसको भव सागर या भव सिंधु कहा जाता है। तो जो व्यक्ति कृष्ण कथा सुनता है वो आसानी से इस भव सिंधु से पार हो सकता है। तो ये भव रोग के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। ये सबसे बड़ा रोग है ये भौतिक जगत में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। तो ऐसे भव रोग से मुक्त होने के लिए हमें कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा सुनना और करना चाहिए। क उत्तम श्लोक गुणानुवादात, तो ऐसा परीक्षित महाराज पूछते हैं, जब इतना सरल, मधुर और सुलभ उपाय है ऐसे भयंकर भवसागर से मुक्त होने के लिए, इस भवरोग से मुक्त होने के लिए, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस उत्तम श्लोक कृष्ण की कथा का पान नहीं करेगा। वो स्वयं उत्तर देते हैं, विना पशुघ्नात्, केवल पशुघ्न जो पशु की हत्या करता है, जो पशु की हत्या करने से जिसका हृदय बहुत क्रूर हो गया है, जो बहुत भोग वृत्ति रखता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी कृष्ण कथा में रुचि नहीं रखेगा। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। तो जब यहाँ ऋषियां भी इसी प्रकार का प्रश्न करते हैं कि इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान के पुण्य यशों को नहीं सुनना चाहता है। पशुघ्नाथ, जो पशुघ्न है वो नहीं सुनेगा। उसी प्रकार से भागवत के अन्य जगह में बताया गया आत्महा, न तरेत स आत्महा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो तैरने के लिए तैयार नहीं होगा इस भवसागर को, जो आत्महा है, जो अपनी आत्मा की हत्या करना चाहता है। निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम तन्मायतेन देवतेन मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, उसके बाद पुमान भवत भिम न तरेत स आत्महा, पुमान भवत भिम, तो अद्भि मतलब जल, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस भवसिंधु को पार नहीं करेगा इसका आश्रय लेके सिवाय आत्महा। आत्महा मतलब अपनी आत्महत्या करने वाला, आत्मा की हत्या, जो आध्यात्मिक विषय में बिल्कुल रुचि नहीं रखता है ऐसा व्यक्ति केवल भगवान की कथाओं में रुचि नहीं लेगा। तो पशुघ्न और आत्महा, ये ऐसे दो प्रकार के लोग हैं जो आध्यात्मिक विषय में कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन में रुचि नहीं लेंगे। तो ये है उत्तर मुनियों के प्रश्नों के लिए। मुनियों का प्रश्न है कि इस कलह प्रधान युग में जब इतना आसान रास्ता है कृष्ण कीर्तन करने का, तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिसका इसको अपनाएंगे नहीं। तो भागवत में ही बाद में उत्तर दिया है, पशुघ्न और आत्महा, ये दो प्रकार के व्यक्ति। इसलिए इनके अलावा हर एक व्यक्ति को चाहिए वो कृष्ण कथा में रुचि ले, और ऐसा करके धीरे 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 से व्यक्ति अपने जीवन को परिपूर्ण कर सकेगा। समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे, फिर क्या है, भवान बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम नतेशाम। समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम, तो जिसने भगवान श्री हरि के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किया है पूरी तरह से, समाश्रित है, संपूर्ण रीति से आश्रित हो गया है उस भगवान का, जो कि सारे महत्य सारे ब्रह्मांड के आश्रय हैं और जिनके गान जो है वो पुण्य हैं, पुण्यवान है। तो ऐसे भगवान के शरण ग्रहण करने से भवाम बुद्धि वत्स पदम परम पदम, तो ऐसे भव अम्बुधि ये भव सिंधु जो है ये कैसे बन जाता है, वत्स पदम, एक गाय के बछड़े के खुर के नीचे जितना जल है उतना जल इतना ही होता है, तो इतना जो जल होता है इसको पार करना कोई कठिन नहीं है बात, लेकिन बहुत एक किसी सागर को पार करना ये तो बहुत मुश्किल है। तो वही बड़ा भवसागर कृष्ण कीर्तन करने के कारण इतना छोटा सा जल बन जाता है जिसको पार करना बहुत आसान है, क्योंकि ये भौतिक जगत क्या है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, यहाँ पे हर पद में कोई ना कोई विपद है, इसलिए इस भौतिक जगत का कोई भरोसा नहीं रख सकते। यदि भरोसा रख सकते हैं तो इतना ही है कि हर कदम पे विपद है, इतना निश्चित रूप से जान सकते हैं कि हर कदम में यहाँ विपद है। इसलिए भौतिक सृष्टि में कोई भरोसा नहीं रख के हमें भगवान के कथा और कीर्तन की पद्धति में पूरा विश्वास रखना चाहिए, और इसको अपनाने से भव सिंधु को पार करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो तरह तरह से बार बार श्रीमद् भागवत में यही बताया गया है कि कलयुग और भौतिक जगत कितना भयंकर है, इसको पार करना असंभव है, और दूसरी ओर कि इसको पार करने का सबसे सुलभ पद्धति है कृष्ण कीर्तन का पथ। इन दोनों चीजों के बारे में यदि हमें पूर्ण विश्वास हो तो हमारा जीवन सफल रहेगा। यदि दोनों में से एक में विश्वास नहीं है फिर भी काम ठीक ठाक नहीं होगा। यदि केवल हमें इतना विश्वास है कि भौतिक जगत दुखों का कारण है लेकिन इसका उपाय क्या है नहीं मालूम तो क्या होगा, कोई लाभ नहीं। दूसरी ओर ये पता है कि कृष्ण कीर्तन बहुत अच्छा है, हमें करना चाहिए, लेकिन ये विश्वास नहीं है कि भौतिक जगत संकट और दुख का जगह है, तो हम क्या सोचेंगे, कीर्तन भी करेंगे भोग भी करेंगे, कीर्तन का सुख भी मिलेगा और संसार का सुख भी मिलेगा, दोनों चीजें साथ साथ करेंगे तो फिर सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए इन दोनों चीजों में हमें पूरा विश्वास होना चाहिए, एक कि ये अशाश्वतम दुखालयम है ये भौतिक सृष्टि, और दूसरा कि भवसागर के लिए उपाय केवल कृष्ण कीर्तन है, कृष्ण का गान करना, समस्त बीमारियों की औषधि है ये कृष्ण कीर्तन। जो व्यक्ति इस पथ को स्वीकार करता है वो बड़ा बुद्धिमान है, और जो नहीं करता है वो पशुग्न है, वो आत्महा है। तो ये है ऋषियों का प्रश्न, इसका तात्पर्य ये है कि कौन नहीं करेगा, इसका मतलब है कि उसको करना ही चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं ऋषि। एक बोलने की पद्धति है, जैसे यदि हम कहेंगे यदि सड़क में खुला 1 करोड़ रुपए का बक्सा रखा है, इसमें 1 करोड़ रुपए रखे हैं, खुला है कोई भी आके ले सकता है, तो हम कहेंगे कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जाएगा लेने के लिए, है ना। शहर के बीच में सड़क में कहीं रखा हो तो ये कह सकते हैं कौन ऐसा व्यक्ति है बेलगाम शहर में जो जाके वो नहीं लेगा, हर एक आदमी जाके तुरंत वहां जाके लेने का कोई प्रयास करेगा। तो जब हम कहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जाएगा, हम कहते हैं कि अवश्य ये करने योग्य है, हमें भी विश्वास है कि पैसा आने से सारी समस्याओं का समाधान होगा, इसलिए हम कहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जाएगा। कहना चाहते हैं कि अवश्य जाएंगे और अवश्य जाना चाहिए। उसी तरह से जब हम कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं कि कौन ऐसे व्यक्ति है जो ऐसे कलह प्रधान युग में कृष्ण कीर्तन नहीं करेगा, हम कहना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, सबके लिए अनिवार्य है ये। जो अपनी भलाई चाहता है, जो अपना हित चाहता है, उसको कृष्ण कीर्तन का पथ अपनाना ही चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, टीका है?
थोड़ा फिलॉसफी थोड़ा बताएंगे तो थोड़ा बहुत।
मतलब
मतलब जो आचार्य गण है जो महाविष्णु
भक्तों का सेवा
सेवा कर तो सेवा करने से ही कुछ भक्तों का भी विचार है कभी कभी बोलते हैं आप लोग सेवा 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 बोलते हैं लेकिन आपके कथा में इंटरेस्ट नहीं करते ऐसे कुछ लोग तो बोलते हैं ये करते रहते ये करते रहते तो बाहर भी हमको ऐसे सुनना पड़ता है तो इसका कैसे क्या उत्तर है क्या सही है
इस श्लोक में जो आपने बताया उसका क्या तात्पर्य है स्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनात् कि महत भक्तों की सेवा करने से वासुदेव कथा रुचि भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न होती है इसका मतलब है कि हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए और कथा भी सुनना चाहिए तो भक्तों की सेवा करने से रुचि उत्पन्न हो जाती है और निवृत्त तर्शे श्लोक से हमने सुना कि कथा सुनते रहने से भी और रुचि बढ़ती है जैसे कि पीलिया के रोगी को गन्ने का रस पीते रहना चाहिए भले उसे अच्छा कड़वा लगे या न लगे शुरुआत में क्योंकि वही एकमात्र उपाय उसके लिए है तो जैसे जैसे वो गन्ने का रस पीता जाएगा वैसे वैसे उसकी बीमारी भी ठीक होती जाएगी क्योंकि वही एकमात्र उपाय है जॉन्डिस के लिए पीलिया के लिए तो शुरुआत में जो उसको रस कड़वा लग रहा था हालांकि वो रस मीठा है अभी धीरे धीरे से कड़वापन कम होते जाएगा और उसका मिठास उसको आने लगेगा और जब पूरी तरह से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तब उसको गन्ने के रस का मिठास पूरा पूरा अनुभव हो जाएगा तो ये दोनों चीज़ें हैं हमें भक्तों की सेवा करनी है और साथ साथ श्रवण भी करना है दूसरी बात कि भक्तों की सेवा करना इसका क्या मतलब है मतलब आदेश का पालन करना महत सेवा तो महत श्री प्रभुपाद जी हैं वो बता रहे हैं हमें अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अंदर उन्होंने हमें एक दिनचर्या ये दैनिक कार्यक्रम बतलाया है जो हर तरह से संतुलित है यदि हमने उस कार्यक्रम का पालन किया जिसमें अनेक अंग हैं तो सब कुछ हो जाएगा प्रभुपाद जी ने इतने बुद्धिमानी से ऐसे दैनिक कार्यक्रम बनाया कि भक्ति के समस्त अंग उसमें आ जाते हैं कौन सा अंग नहीं आता है आप देखिए कोई भी नहीं सारे अंग आ जाते हैं प्रातः काल में उठ के दर्शन करना कीर्तन करना भगवान का गान शुरू होता है हमारा दिन ही भगवान के गुणगान से शुरू होता है नृत्य करना तुलसी पूजा फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं साधना हमारी कर लेते हैं फिर अभी भागवत क्लास गीता क्लास या अन्य कोई कथा होती है फिर अध्ययन के लिए थोड़ा समय प्रसाद का सेवन करते हैं और फिर बाकी दिन में जितने भी घंटे हैं हमारी अपनी अपनी निर्धारित सेवा करते हैं कोई रसोई घर में कर रहा है कोई पुजारी सेवा कर रहा है कोई खेती कर रहा है कोई गाय की सेवा कर रहा है कोई अलग 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 सेवाएं कर रहे हैं तो मूल उपाय है संतुलन हम संतुलन या बैलेंस को नहीं बनाए रखेंगे तो फिर ये दीर्घ काल नहीं चल सकता है जैसे कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम कर रहा है लेकिन खाता नहीं है कुछ जब खाएगा नहीं तो कब तक वो सेवा कर पाएगा जितना उसने आज तक खा के शरीर बनाया है ये शरीर में जितनी शक्ति आज तक है रिजर्व वो उसको काम में आएगी लेकिन कब तक चलेगी फिर धीरे से वो खाना नहीं खाएगा एक दिन दो दिन तीन दिन फिर तो बीमार हो ही जाएगा उसी प्रकार से यदि हमारा आध्यात्मिक जीवन भी संतुलित नहीं होगा तो दीर्घ काल में ये अच्छा नहीं है थोड़े समय के लिए हाँ कभी आपातकालीन स्थिति होती है और हमें करना पड़ता है वो ठीक है लेकिन दीर्घ काल के लिए हमें चाहिए कि प्रभुपाद ने बतलाए हुए संतुलित कार्यक्रम को हम अपनाएं सेवा के समय में सेवा, जप के समय जप, श्रवण के समय में श्रवण। हाँ, एक आध बार कुछ हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन एक नियम की दृष्टि से बता रहे हैं, हर चीज को अपने अपने जगह में अपने अपने समय पे यदि हम करें तो फिर सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। और ऐसे श्रवण करने से हमारी सेवा में जो फल उत्पन्न होने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि अंततः फल प्रदान करने वाले भगवान हैं। तो हमारा परिश्रम फलित होगा प्रत्यक्ष रूप से, जितना हमारे हम संतुलित आचार्यों के बताए हुए पद से चलेंगे वैसे वैसे उनकी कृपा से हमारे सारे कार्य सफल होते जाएंगे धीरे 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 से। परीक्षाएं भी भगवान देंगे अवश्य हमारी श्रद्धा की परीक्षा करने के लिए, परंतु हमारे लिए सुलभ मार्ग इतना ही है कि आचार्यों के बतलाए हुए पथ पे हम बिल्कुल चलें। और जहां तक कृष्ण कथा की बात है, दो प्रकार की कृष्ण कथा है, एक है कृष्ण के बारे में कथा और दूसरा है कृष्ण ने कही हुई कथा। जो भगवद गीता है, फिलॉसफी है, वो एक प्रकार की कृष्ण कथा जो कृष्ण ने कही। और श्रीमद् भागवत में जो भगवान की विभिन्न लीलाएं हैं, चाहे वृंदावन की हों या अन्य अवतारों की हों, वो कृष्ण के बारे में है। तो प्रभुपाद बतलाते हैं कि हमें दोनों को सुनना चाहिए, जैसे जैसे प्रसंग आता है वैसे वैसे हम सुनते हैं, भागवत हो या गीता हो या जो भी हो। तो इनको हमें नित्य नियम बनाकर सुनना चाहिए, तब हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य ठीक ठाक बना रहेगा। इसमें यदि हम लापरवाही करेंगे तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम थोड़े कमजोर हो जाएंगे। इसलिए हर भक्त को चाहिए कि वो अपने दैनिक कार्यक्रम को संतुलित बनाए। संतुलित बनाने का मतलब नहीं है कि किसी एक विभाग को हम कम महत्व दें, अपनी अपनी जगह में हर एक विभाग का महत्व है, उसको अपनी जगह में ठीक ठाक करना चाहिए। यदि सेवा हमें 6-7-8 घंटे करने हैं, जी लगा के हृदय से करना चाहिए, जो हमारे पास है सब लगा के बुद्धि से हृदय से करना चाहिए, लेकिन श्रवण के समय अच्छी तरह से सुनना चाहिए, जप का समय अच्छी तरह से जप करना चाहिए, प्रसाद का समय उस समय प्रसाद लेना चाहिए, अच्छी तरह से लेना चाहिए शांत चित्त से, आराम के समय विश्राम अच्छी तरह से करना चाहिए, सही मात्रा में सही समय, सही समय में सही चीज करेंगे, यह सत्वगुण का लक्षण है, इससे प्रगति होती है। यदि गलत समय में गलत चीज करेंगे, कभी किया कभी नहीं किया ऐसे करेंगे तो ये राजसिक चित्त हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, इसमें असंतुलन हो जाएगा। जैसे हमने कहा, कभी कभी ऐसे अवश्य परिस्थिति हो सकती है जिसमें हमारे दैनिक कार्यक्रम में कोई विघ्न आ सकता है, वो एक आध बार हो जाता है, ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन रोज के हिसाब से ऐसे हमें जाने का प्रयास करना चाहिए। श्रवण करने से जब कहा जाता है कि श्रवण करना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे सेवा में उत्साह कम करना चाहिए। हम दोनों को एक नहीं समझना चाहिए कि श्रवण करेंगे तो सेवा नहीं करेंगे, सेवा करेंगे तो श्रवण नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, दोनों ही करना चाहिए अपनी अपनी जगह में, दोनों का महत्व है। इसलिए जब हम कहते हैं कि श्रवण करना है, ये सेवा को कम करने की बात नहीं हो रही है, ये केवल श्रवण के लिए जो उचित समय निकालना चाहिए उतना निकालने के लिए है बस।
हाँ,
सके। हाँ
उदाहरण के तौर पे किचन वाले सुबह किचन में चले जाते हैं गुरु पूजा आयोजन किए बिना, और हम भी जो बाहर काम करते हैं वो बाहर चले जाते हैं बाहर सेवा करने के लिए, तो गुरु पूजा अटेंड नहीं कर पा रहे, तो उससे हम बाहर अगर सेवा कर रहे हैं उसी समय पे तो गुरु पूजा अटेंड करने का फल मिल जाता है, हमको करना भी चाहिए और बाद में बाहर जाना चाहिए?
नहीं, हमारे संस्थान में देखिए ऐसे अनेक सेवाएं हैं। एक साधारण मंदिर में भी देखिए, जो भले गोकुल धाम जैसे प्रकल्प न हो, शहर में समझिए एक मंदिर है कोई, तो वहाँ भी जब भक्त लोग जप कर रहे होते हैं, अनेक ऐसे भक्तों की दूसरी सेवा होती है। कोई उदाहरण, जो पुजारी हैं उनको जाके भगवान का श्रृंगार आदि करना पड़ता है, उनको भक्तों के साथ जप करने में नहीं मिलता, हर एक मंदिर में है, तो उनकी वो निर्धारित सेवा है वो उसी समय में करना होता है, तो क्या कर सकते हैं, वो उस समय जप नहीं कर सकते, उनको या तो पहले या बाद में कभी जप कर लेना चाहिए। उसी प्रकार से कई भक्त हैं मंदिरों में भी जो सुबह सुबह भक्तों के नाश्ता प्रसाद बनाने के लिए किचन में चले जाते हैं, हर मंदिर में ऐसे होता है। तो ऐसे कई सेवाएँ हैं जो उसी समय की जाती हैं और उसी समय करना चाहिए क्योंकि आवश्यक है उस समय करने से। गुरु पूजा के बाद में भक्त जाएंगे पकाने के लिए प्रसाद भोजन, तो भक्तों को भोजन नहीं मिलेगा, है ना। तो कई सेवा ऐसी होती है जो उसी समय में करनी पड़ती है। तो उसी प्रकार से हमारा एक प्रोजेक्ट यहाँ गोकुल धाम है, जो खेत आदि के कार्य होते हैं, गाय के सेवा होती है, तो ऐसे खेत के कार्य गाय के कार्य अधिकतर प्रातः काल में शुरू होते हैं। भले अन्य कार्य जो है ऑफिस खोलते हैं लोग मंदिरों में 10 बजे खोल लेते हैं, लेकिन यहाँ 10 बजे तक तो काफ़ी कुछ काम हो जाता है। इसलिए यदि जो हम सेवा कर रहे हैं उस समय यदि वो आवश्यक है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो वो हमारी निर्धारित सेवा है, जैसे पुजारी की सेवा है, तो अवश्य हमें लाभ मिलेगा उस समय। लेकिन हमें देखना चाहिए कि यदि ये आवश्यक है तो जहां तक हो सके हमें देखना चाहिए कि हो जाए प्रोग्राम, लेकिन जब वो सेवा इस प्रकार की है कि उसी समय करना है उसको, तो फिर ठीक है, वो किया जाए अवश्य। ठीक है गोपाल, सुनने से हम सुन रहे हैं ना, हम जो बोल रहे हैं ये हम निंदा कर रहे हैं, हमें पता चलता है कि हम निंदा कर रहे हैं, हाँ हमें पता चलता है ना, हम जो बोल रहे होते हैं हमको पता होता है ना कि हम क्या बोल रहे हैं। इतना ही है कि आदत इतनी हो जाती है कि उसको साधारण समझ लेते हैं। जैसे भोजन के समय लोगों को कभी कभी अचार चाहिए होता है, उसके बिना अचार वो नहीं होता है, किसी को दही चाहिए होता है, उसके बिना उनको भोजन अधूरा लगता है। उसी प्रकार से दुनिया में आजकल लोगों को क्या लगा कि एक दूसरे दिन में दो दो चार बुराई नहीं की तो ठीक दिन चलता नहीं है। ये है कलह प्रधान युग, 2000 लोगों को तो कुछ ना कुछ भला बुरा कह देना चाहिए। एक संत बता रहे थे, श्री संप्रदाय के एक संत थे, वो अपने प्रवचन में बता रहे थे कि आजकल ऐसे है कि जब तक हम सुबह से दो चार लोगों के बारे में कुछ बुरा नहीं बोले खाना पचेगा नहीं। एक सामान्य टीका कर रहे हैं वो दुनिया के लोगों की कि आजकल ऐसे एक वातावरण बन गया है, तो ऐसे कली के प्रभाव से हमें बच के रहना चाहिए, ये कहने की बात। तो अवश्य हमें पता होता है हम क्या बोल रहे हैं, इसलिए सोच के बोलना चाहिए। क्या होता है कि लोग अक्सर बिना सोचे बोल देते हैं, फिर गड़बड़ शुरू हो जाती। यदि हर एक व्यक्ति सोच समझ के बोले तो समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी। बिना सोचे हम कुछ बोल लेते हैं तो उससे गड़बड़ हो जाता है कि नहीं। बिल्कुल, प्रभुपाद बोल रहे हैं और हम उसको सुन रहे हैं आंखों के द्वारा, फिर भी कानों से श्रवण करना उसका अपना महत्व है, अपनी जगह में दोनों का महत्व है। कानों जब हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि अभी हमें कानों से सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ाई की और पढ़ाई श्रवण है तो अभी क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दोनों का अपने जगह में महत्व है, दोनों ही करना चाहिए। संतुलन मुख्य बात है, बैलेंस, हर चीज में संतुलन करना चाहिए, ये सत्व गुण है। हाँ, वैसे जो मशीन वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उनके फायदे अवश्य हो सकते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग भी होता है। ये आश्रम, हर एक शहर के आश्रम में ये एक समस्या हो गई है। अभी हर एक ब्रह्मचारी ये मशीन चाहता है, एक के पास है तो दूसरा चाहता है, दूसरा है तीसरा चाहता है, भले उसको इस्तेमाल करना हो ना हो, क्योंकि उसके पास है हमको भी चाहिए। और ऐसा नहीं कि सभी लोग वही प्रवचन वगैरह सुनेंगे, फिर और कोई भी आ जाएगा बात सुनने के लिए, तरह तरह की चीज़ें सुनेंगे। फिर आजकल सब चीज़ों में क्या क्या आता है, कोई DVD, कोई क्या 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 देखेंगे, तरह तरह की चीज़ें, ये सब खतरे हैं इन सब चीज़ों में। तो हम यहाँ जीवन सरल बना रहे हैं, इसलिए हमें सरल जीवन के अनुसार जो उचित है हमें करना चाहिए। पहले के ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी ना, फिर भी लोग अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धालु थे ना, वो कितने बार मिलते थे अपने गुरुजनों से, उनकी दीक्षा होकर के वो कहीं चले जाते थे, हो सकता है इस जीवन में मिले भी या नहीं भी मिले, एक बार दो बार मिले, कभी मिले नहीं मिले, कभी कभी सुन लेते थे थोड़े समय के लिए, फिर वो अपने उनके आदेश के पालन में उनके भक्तों से मिल के अपने ग्रंथों का अध्ययन करके आदि भक्ति चलाते थे। तो यहाँ प्रभुपाद के ग्रंथ हैं, यहाँ पे दिन में दो बार क्लास होता है, भक्तों से भी चर्चा कर सकते हैं, तो ऐसे सब हम संपर्क में रह सकते हैं। ठीक है,
कुछ भी पूछ रहे थे तो मैंने ऐसा उत्तर दिया कि जब गुरु ने किसी अधिकारी को, किसी भक्त को हमारे उनको उनको सुपुर्द किया है और हम उनके आदेशों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गुरु के आदेशों के अनुसार कार्य करने जैसे ही है।
हाँ बिल्कुल, तो सही है।
तो हमारे को घबराने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें गुरु के आदेश नहीं प्राप्त करें।
गुरु के आदेश तो हम पालन कर ही रहे हैं, हम तो प्राप्त किए ही हैं गुरु के आदेश। 16 नाम नियम जप करना, माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है, भक्तों के संग में रहना है, सेवा करनी है ना, भक्तों के बीच प्रेम से रह के साधना ठीक से करनी है, ये तो सर्व साधारण नियम सबके लिए हैं, तो हमें करने ही चाहिए सबको। और कोई है?
आप बोल रहे थे आत्महा, किलिंग द सोल, इसका मतलब है वो वापस कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं आता या?
आत्महा का मतलब है कि अपनी आध्यात्मिक वृत्ति को ढक देना, नष्ट तो नहीं हो सकती क्योंकि आत्मा का विनाश नहीं हो सकता है, परंतु आध्यात्मिक जो हमारी एक प्रवृत्ति है, आध्यात्मिक चेतना है, उसको दबा देना, उसको ढक देना भौतिक चेतना से, उसको भुला देना तरह तरह के माया के कार्यों के द्वारा, ठीक है बेटा? क्योंकि अपने ग्रंथों में भी प्रभुपाद यही बोल रहे हैं ना, यदि हम प्रभुपाद के ग्रंथों से सीख रहे हैं तो प्रभुपाद जो ग्रंथों में बोल रहे हैं वो हमें करना चाहिए ना। प्रभुपाद ग्रंथों में बोल रहे हैं कि व्यक्तियों से हमें सुनना चाहिए, तो बोलेंगे नहीं हम केवल पुस्तक पढ़ेंगे। अरे पुस्तक पढ़ के पुस्तक में जो लिखा है वो करना चाहिए ना, नहीं तो पुस्तक पढ़ने से क्या लाभ। प्रभुपाद पुस्तक में बोल रहे हैं तो वैसे करना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में वारकरी लोग बोलते हैं हरि मुखे मणा, हरि मुखे मणा, कि हरि का नाम मुंह से लो, लेकिन लेते नहीं। फिर बोलते हैं कि लेना चाहिए, लेना, लेते नहीं। जैसे हम सबको बोला हरे कृष्ण जप करो, खुद नहीं जप करेंगे, ऐसे प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ रहे हैं लेकिन प्रभुपाद जो ग्रंथों में आदेश दे रहे हैं उनका पालन करना चाहिए। क्योंकि व्यक्तियों से प्रत्यक्ष बैठ के सुनने में शक्ति की वृद्धि होती है, ये पद्धति है। सिस्टम है ये, जो एक वातावरण निर्माण होता है जब भक्त एकत्र बैठते हैं और चर्चा होती है, कृष्ण कीर्तन कृष्ण कथा होती है, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है उसके लिए। जो चित्त पे उसका एक असर पड़ता है वो निराला ही है। अकेले में बैठ के पढ़ने में भी लाभ होता है, परंतु जब भक्तों के संग में बैठ के श्रवण करने से जो लाभ होता है वो अन्य किसी भी तरह से नहीं होता। का परिवर्तन कैसे होगा?
कली के बीच में ये परिवर्तन अभी 10,000 साल का क्या है, क्योंकि ऐसे मंदा सुमंदा मध्य ऐसे परिस्थिति है, तो इतना सब लेके चलना है, ऐसे परिस्थिति को हम चेंजेस लेके आना चाहते हैं, तो ये हमारे अंदर भी लेके आना चाहते हैं, और ये बहुत संभावना है क्या? ये
संभावना नहीं है, निश्चितता है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की वाणी है। भगवान ने कहा है पृथ्वी थे आच्छे जो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए मेरा नाम। जगह जगह शास्त्र में बताया गया है कि ये आंदोलन विश्वव्यापी हो जाएगा, तो ये है, इसमें विश्वास रखते हैं। अब ये कल्पना कीजिए कि 40 साल पहले किसने सोचा होगा कि अफ्रीका के जंगल में, साउथ अमेरिका में अमेज़न नदी के जंगल में लोग हरे कृष्ण जप कर रहे हैं। बोले पागल है कौन, ऐसे बहुत हो ही नहीं सकता। लेकिन हो रहा है ना। अरब देशों में गीता भागवत लोग पढ़ रहे हैं, साम्यवाद देशों में पढ़ रहे हैं, अमेरिका इत्यादि लोगों देशों में पढ़ रहे हैं, कौन विश्वास करता उस समय? केवल 40 साल की बात है, कितना परिवर्तन हो गया 40 साल में, इतना हो सकता है तो और 400 सालों में कितना होगा, 100 सालों में कितना होगा। तो हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए इसमें, भले इसके लिए हाँ अभी हमें जोर से कलयुग का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, परंतु ये तो कलयुग की संध्या मात्र है। घोर कलयुग तो 10,000 साल के बाद शुरू होगा। अभी कलयुग जो है थोड़ा उसको दबाया हुआ है महाप्रभु के आंदोलन के द्वारा, और अभी अभी धीरे से भक्ति का प्रभाव बढ़ेगा धीरे 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 धीरे, और फिर ये विश्वव्यापी आंदोलन हो जाएगा। 10,000 साल तक ये चलेगा। ये 10,000 वर्ष जो है ये कलयुग के भीतर स्वर्ण युग हो जाएंगे। एक ईमेल हमको किसी ने भेजा कि कोई एक व्यक्ति है जिसने बहुत पहले कोई भविष्यवाणी की थी, जो कोई ज्योतिष शास्त्र आदि के ऊपर, कि अभी आने वाले वर्षों में बहुत कठिनाई होगी पर्यावरण की दृष्टि से, खास करके बहुत मुश्किल होगा, लेकिन 40-50 साल के बाद ये पर्यावरण की समस्या थोड़ी बहुत सेटल हो जाएगी, ठीक ठाक हो जाएगी, और उसके बाद में फिर महाप्रभु की भक्ति का आंदोलन जो है और तेजी से बढ़ेगा। नहीं तो 80-100 साल लग जा सकते हैं उसको, लेकिन उसको और पूरी तरह से जैसे महाप्रभु ने कल्पना की थी वैसे और ज़्यादा बढ़ने के लिए, तो हमें उनके लिए तैयारी करके रखनी है। वैस अभी बढ़ता रहेगा अवश्य, परंतु 100 साल के बाद और पूरा फैल जाएगा। और ऐसे बताया जाता है भविष्य पुराण में, ऐसे जनिनिवास प्रभु बता रहे थे एक बार, कई साल पहले हम बात कर रहे थे, कि भविष्य पुराण में बताया है कि इस्लाम धर्म का जीवन जो है वो 1500 साल का है, यवन धर्म का। उनका सन 600 में चालू हुआ, वो मक्का से मदीना गए हजरत मोहम्मद 600 साल में, तो 600 से और 1500 लगाई तो 2100 साल हो जाता है, तो बराबर और 100 साल उनकी है। ठीक है, और 100 साल बचे हैं उनके लिए,
उसके बाद खत्म
हो जाए। तो उस 100 साल में यहाँ ये भी भविष्यवाणी मैच होता है कि ये और बढ़ेगा। भविष्य पुराण में हमने देखा नहीं, लेकिन ऐसे जनिनिवास प्रभु बोल रहे थे एक बार। कई लोग बोलते हैं ये भविष्य पुराण इतना अधिकृत नहीं है, लेकिन पता नहीं, जो भी है जो भी होगा, कोई बोल रहा था कि इस्लाम के ग्रंथों में ही बताया गया है कि 1500 साल रहेगा, उन्हीं के ग्रंथों में, उन्हीं लोगों के ग्रंथों में बताया है कि ये 1500 साल रहेगा, कोई ऐसे बोल रहा है। वो लोग भी जानते हैं इस बात। और सनातन धर्म, ये विशेष करके भागवत धर्म, अभी जो कृष्ण भक्ति का धर्म है महाप्रभु का धर्म, ये तो बढ़ता जाएगा। अभी जो समस्याएं देखते हैं उससे शायद हमें विश्वास हो या ना हो, ये समस्या, लेकिन सब महाप्रभु का कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संघा परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन के पद का विजय अवश्य होना है। केवल इतना ही है कि हम श्रद्धालु रहेंगे कि नहीं, ये हमारे ऊपर। हम श्रद्धालु रहेंगे और डट के रहेंगे तो श्रेय हमारा थोड़ा कुछ आ जाएगा, इसको तो होना ही है। जैसे अर्जुन को भगवान ने बताया विजय तो होना ही है पांडवों को, केवल तुम युद्ध करोगे श्रेय तुमको मिलेगा। तो उसी तरह से अभी गोकुलधाम बनना ही बनना है। अभी हम श्रद्धालु रहेंगे, बनाएंगे तो श्रेय जाएगा। गोपेश्वर प्रभु ने बहुत मदद की है, बहुत सेवा की, और अन्यों का नाम सब एक एक करके सबके नाम आएंगे तो होना ही है। लेकिन हमें श्रद्धालु रह के करते रहना है, करते रहना है। तो ये सब अपनी जगह में ठीक होगा। बोल रहे थे 40 साल पहले किसी ने सोचा था 1965 में, 50 साल पहले समय, ऐसे किसी ने सोचा था कि ऐसे भी हो सकता है कि अंग्रेज लोग सर ऊंधा कर धोती कुर्ता साड़ी पहन के तिलक लगा के कंठी माला डाल के जप माला लेके सड़क में कीर्तन करेंगे? किसी ने सोचा था ऐसे हर देश में होगा? तो महाप्रभु का आंदोलन चमत्कार का आंदोलन है, आध्यात्मिक मार्ग चमत्कार का मार्ग है, कृष्ण की कृपा से चमत्कार होते हैं। तो ये कोई बड़ी चमत्कार नहीं है भगवान के लिए। जो भी समस्या हम देख रहे हैं वो है, लेकिन भगवान ने भविष्यवाणी की है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, तो हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। हाँ, हमें देख के सीखना चाहिए, आजकल की परिस्थिति को देख के, और उसके बारे में हमें कुछ करना भी चाहिए। जैसे हम अभी यहाँ कर रहे हैं, अपनी अपनी ओर से गोकुलधाम हम बना रहे हैं। दुनिया एक रास्ते से जा रही है और गोकुलधाम दूसरे रास्ते से जा रहा है, तो अपनी ओर से जितनी हमारी शक्ति है, बुद्धि है, वैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो हम कार्यरत हैं। लेकिन साथ साथ बाहर की दृष्टि को देख के हमें उदास नहीं होना चाहिए, उसमें हमारे भक्ति पर परिणाम पड़ सकता है। अरे कुछ होगा नहीं, इतना बुरा है बाहर, क्या करें, कुछ चलो भक्ति करने से क्या फायदा, कुछ होने वाला नहीं है, नहीं? इसलिए ठीक है, हम बाहर का जो बाहर जो चल रहा है उसको देखते हैं, नोट करते हैं, समझते हैं, भले हम उसकी कड़ी निंदा भी करते हैं प्रचार के समय, लोगों के बारे में बुराइयों के बारे में जानकारी भी देते हैं ताकि उनको पता चले, लेकिन साथ साथ केवल बुराइयों को देखकर उनके बारे में बोलना और कुछ नहीं करना, इससे कोई फायदा नहीं। हमें जोरदार और प्रचार करना चाहिए, जोरदार और हमारे प्रकल्पों को आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे कि ये गोकुलधाम है, ये हमारा युद्ध है, और ये सफल होगा भगवान की कृपा से, क्योंकि हम भगवान की कृपा पर निर्भर है, और भगवान की कृपा से सारे चमत्कार होते जाएंगे, इसलिए हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। है ना, है विश्वास? भविष्यवाणी है, हम तो शास्त्रों में देखते हैं ना इसको, शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा है, भगवान के ऊपर श्रद्धा है। है वो रहने दो, दुनिया अपने रास्ते में जाने दो ना, क्या कर सकते हैं हम, अपनी ओर से अपना जो है वो कर सकते हैं, हमारी क्षमता में जो संभव है, जो हमारा कर्तव्य है वो तो हम कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने एक आंदोलन शुरू किया प्रभुपाद, एक व्यक्ति ने ठान लिया और देखो कितना फर्क पड़ा उसके लिए। अब देखोगे दुनिया में जितने भी बड़े बड़े क्रांति हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े चीजें हुए हैं जिससे समाज में बड़े परिवर्तन हुए हैं, वो सब एक एक व्यक्ति के कारण हुए हैं। चाहे वो भलाई के लिए हो या बुराई के लिए हो दूसरी बात है, लेकिन जो बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं उसके पीछे एक व्यक्ति रहा। हिटलर को देखो, एक व्यक्ति ने सारे देश को पागल बना दिया, सारे विश्व को नहीं, एक देश को कैसे उसने उत्तेजित करके प्रभावित करके श्रद्धालु निष्ठावान बना उनके सिद्धांत के प्रति, उनके लिए जान देने के लिए तैयार हो गया सारा देश, और उसकी वजह से सारे विश्व को हिला दिया। उधर देखो लेनिन रशिया में, उधर चीन में माओ माओ जेदोंग, हर एक देश में हर एक प्रांत में इतिहास में आप देखोगे कि एक एक व्यक्ति के कारण कितना बड़ा बड़ा परिवर्तन हो गया। तो जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, परिवर्तन होते हैं, वो ऐसे इंस्पायर्ड प्रेरित व्यक्तियों के द्वारा होती है, जो निष्ठावान अपने अपने पथ के प्रति होते हैं, जो ऐसे ऐसे रुकावटों के सामने, ऐसे ऑब्स्टिकल्स को क्या बोलते हैं, ऐसे अड़चनों का ऐसे का सामना करते हैं जिनको पार करना असंभव लगता है, फिर भी ऐसे उनका उनका जो निश्चय है वो भी उतना ही दृढ़ है, इसलिए ऐसा सब वो चीजें कर पाए उनकी इच्छा शक्ति मात्र से, उनकी दृढ़ता मात्र से। और हमारे पास तो सबसे बढ़िया भगवान की फिलॉसफी है, भगवान की पद्धति है, कृष्ण कीर्तन कृष्ण कथा, ये फिलॉसफी हमारे पास है, भगवान की कृपा है, तो क्यों नहीं हो सकती। केवल हमें श्रद्धा होना है बस, बस वही हमें करना है, हम जितना कर सकते हैं उतना हमें करना है, हमारी क्षमता में कितना है, श्रद्धा पूर्वक हृदय पूर्वक उत्साह पूर्वक बुद्धि पूर्वक आचार्य ने बतलाए हुए पथ के अनुसार हम करते रहेंगे, चलते रहेंगे। है कि नहीं?
I am not qualified to ask that, but materialists are anyhow going away from, they are not helping a movement or something, but all over the world are the devotees going in the same direction as Prabhupada's movement?
क्या सारे विश्व भर में भक्त लोग भी प्रभुपाद के बतलाए हुए पथ में चल रहे हैं? अवश्य चल रहे हैं, थोड़े नहीं भी चल रहे हो, लेकिन अधिकतर तो सभी चल रहे हैं। थोड़े तेज गति से होगा, थोड़े धीमी गति से चल रहे होंगे, थोड़े मध्यम गति से चल रहे होंगे, लेकिन सर्वसाधारण तो चल रहे हैं, भिन्न मत तो थोड़ा बहुत रहेगा ही, लेकिन सर्वसाधारण देखा जाए तो सभी चल रहे हैं, और थोड़े लोग भले इधर उधर जा भी रहे हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी बड़े आंदोलन में तो ऐसे होना ही होना है, जब लाखों लाखों लोगों की बात है तो थोड़ा कुछ तो होगा ही ऐसे, एक परिवार में चार पांच लोगों में भी कितने मत होते हैं ना, तीन लोगों में भी, दो लोगों में भी, एक आदमी के मन में भी भिन्न मत कितने रहते हैं, कंफ्यूजन कितना है। तो फिर लाखों लोग जब होते हैं कुछ ना कुछ तो होगा ही। इसलिए इन चीजों से हमें प्रभावित ना होके हमें समझना चाहिए प्रभुपाद जी ने क्या बताया, उसको करने के लिए हमें एकाग्र चित्त से आगे बढ़ना चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एक ही है कुरु नंद, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है का मतलब है गुरु परंपरा के आदेश का पालन दृढ़ता पूर्वक करना। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री निताय गौर हरि की जय, श्री गोकुल धाम की जय, गौर प्रेमानंदे।